इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रोल मॉडल थे अपने बच्चों के लिए। इब्राहिम की औलाद में से एक बच्चा याकूब अलैहिस्सलाम, जिनकी मौत का तज़किरा बार है। पीछे भी बात हुई थी कि इब्राहिम ने अपनी औलादों के लिए कोशिश की थी, तो अब अगली आयत से थोड़ा सा अब इब्राहिम की ज़िंदगी भर की हुई दुआओं के असरात और ज़िंदगी भर अल्लाह के मुस्लिम बनने के असरात क्या हैं। लिख लीजिए कि अगर हमारी ज़िंदगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलेगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारी औलादों का मुस्तकबिल क्या होगा, इसको अब आप हम आयत 132 से 133 में देखेंगे। लेकिन एक चीज़ बीच में फिर रह गई है, वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आखिरत में सालेह होंगे, वो कैसे होंगे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आखिरत में बड़े बुलंद दर्जे मिलेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों से सब लोग जब उठेंगे ना तो बरहना होंगे, नेकिड होंगे, जैसे माँ के पेट से बच्चा आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सबसे पहले कपड़े पहनाएगा, वजह इज्जत, फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। और दूसरी बात है कि आग में डालते हुए लोगों ने उनके जिस्म से कपड़े उतार दिए थे, अल्लाह ताला उनको देगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़े मेराज के मौके पे मुख्तलिफ अंबिया कराम से मुलाकात की थी। आसमानों पे आज भी नबियों के वजूद की जो उनकी रूहें और जिस हाल में वो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस आसमान पे थे? सातवें आसमान पे थे। कहाँ बैठे थे? बैतुल मामूर को टेक लगाए हुए थे। और बैतुल मामूर क्या है? बैतुल्ला के ऊपर फरिश्तों का काबा, और उसकी छत क्या है? रहमान का अर्श, यानी मुकाम था। सबसे पहले आसमान पे आदम दिखे थे और सातवें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिखे थे। सच बताइए, इतनी आजमाइशों के बाद अगर इतने ऑनर मिल जाएं तो क्या वर्थ इट है? ये इट्स क्वाइट वर्थ इट। वाकई इस काबिल है कि वो हों। अल्लाह ने उनको आजमाइशों में भी पूरा किया, उनके नाम को बाकी रखा। आज दुनिया का हर बड़ा मजहब खुद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जोड़ता है। ये कितनी बड़ी बात है कि लोग आपके साथ जुड़ने की बात करें, ना कि आपसे कटने वाले बन जाएं। और आज मेरे आपके लिए भी यही बात है, आप जितना लोगों को खुश करना चाहते हैं ना, लोग उतने आपसे नाराज होते हैं। पता है आपको ये बात? नहीं पता तो आज ये बात मेरी लिख लें, आप मुझे दुआएं देंगे। अक्सर लोग 10-10 साल लोगों की बातें मान के आखिर कहते हैं मिला कुछ नहीं इधर से, देना क्या उन्होंने, वो नहीं देंगे। हाँ, आप एक अल्लाह के बन जाए, दुनिया आपकी बनेगी। हक का साथ दें, गलत तारीफ ना करें, झूठ ना बोलें, ना किसी के साथ ज्यादती करें, ना किसी के साथ फेवरेटिज्म करें। अल्लाह सुबहान तला आपकी मदद करेगा और इंशाल्लाह ताला आपका भी यही इंजाम होगा। और दुआ करिए कि अल्लाह हमारा ये इंजाम कर दे। चलिए, वसा भी हाँ, और वसीयत की इसी बात की, किसकी भला? अब आप मुझे बता सकते हैं पीछे देखकर हा से क्या मुराद है? शाबाश जी, असलम तो इसी बात की वसीयत की थी इब्राहिम। इब्राहिम जी बोलिए ने के को क्यों? इब्राहिम पे पेश, पेश क्या होती है? फाइल, फाइल। आप एक जुमला बोले मेरे साथ, कुल्लु फाइलुन मरफून। ये ग्रामर पढ़ाते हुए पहले ये पट्टी पढ़ाई जाती है, कुल्लु फाइलुन मरफून, पहाड़ों की तरह पढ़, कुल्लु फाइलुन मरफून, कुल्लु फाइलुन मरफून, यानी काम करने वाले पे हमेशा पेश आती है और उसको मुश्किलात से भी पेश आना पड़ता है। और कुल्लु मफूलुन मनसूबुन, हर मफूल मनसूब होता है। अब ये तो हमने ज़बाने सीखी नहीं है, इसलिए हमें तो आती नहीं है। लोग वो काफी रदीफ जोड़ते हैं ना, तो कहा कि खुद को जेर कर लो तो जबर हो जाओगे, क्योंकि तुमने एक दिन पेश होना है, जबर जेर पेश। अब ये जुमला सारे आगे भेजेंगे फेसबुक पे, तख्तियों की तख्तियां। तो अब कुल्लु फाइलो मरफून को, तो आप देखें ना, तर्जुमा याद करना आसान नहीं है। इब्राहिम ने कहा था कि अब टेक्स्ट से तुम तुक्के लगा ही लेते हैं, लेकिन इब्राहिम लफ्ज पे पेश बता रही है कि ये वसीयत इब्राहिम को नहीं किसी ने की थी, बल्कि इब्राहिम ने की थी। किसको कही थी? बनी ही। ये जो लफ्ज है ना बनी ही, इसको जरा अलग करके लिखेंगे ना तो ये दो लफ्ज है, बनीन प्लस हा, बिन से बनीन जमा, हा किधर साथ आ गई, मुजाफ बन गया। अरबी जुबान में किसी लफ्ज पे जेर आने की दो ही वजूहत होती हैं, एक बोले, बहुत दफा सुना है आपने मेरे से, हर्फे जर उससे पहले आ जाए और दूसरा वो मुजाफ बन जाए, नून गिर जाती है। ये असल में पढ़ते ना ऐसे बनी नहीं ही तो मुश्किल लगता पढ़ना, तो अरबी में ये बहुत जगह है। ये मैंने आपको या बनी इसराइल में भी पीछे भी बताई थी ये बातें। बहरहाल, और वसीयत की इसी बात की, यानी जो खुद करते थे उसी की वसीयत की इब्राहिम ने, किसको? बनी ही अपने बेटों को, व याकूब, और याकूब को। इब्राहिम के बेटे कौन थे बोलिए शाबाश? इस्माइल और इसहाक। याकूब क्या थे इब्राहिम के? इसहाक के बेटे, तो पोता। तो आप कह सकते हैं ना कि इसकी वसीयत की इब्राहिम ने अपने बेटों को और अपने पोते याकूब को भी। क्या कहा? यहां आप इन्वर्टेड कॉमास लगा सकते हैं क्योंकि ये कलाम है। या बनीया, ए मेरे बच्चों, ए मेरे बेटो, इन अल्लाह हस्तफा लकुम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे लिए दीना दीन को, फला तमुतुन्ना, पस ना तुम मर जाना। अब ये जो लफ्ज है ना तमुतुन्ना, असल में ये आपको पता क्या लफ्ज था? फला तमुतुना, ता के बाद नून से पहले पेश थी, तमुतुन एक लफ्ज होता है अरबी में तुम मरना, लेकिन यहां तमुतु को लंबा करने की बजाय छोटा कर दिया, आसान हो गया। फला तमुतुन्ना, यानी पढ़ने में भी सहूलत है, अरबी जुबान में ऐसे बहुत ज्यादा होता है। इल्ला वान तुम मुस्लिमून, मगर ये कि तुम मुस्लिम हो, यानी ऐ मेरे बच्चों, तुमने सारी जिंदगी भी अल्लाह की इताअत करनी है और तुम्हें मौत भी अल्लाह की हुक्म से आए। लफ्ज वसा क्या होता है? अहम बात की वसीयत करना। तौसिया का लफ्ज इसी से है, वसीयत भी इसी से है। उर्दू जुबान में वसीयत के लफ्ज के साथ क्या आता है? बिस्तरे मर्द पे कोई लेटा और कह रहा है उसकी शादी उधर कर देना, फलां को 4 किल्ले जमीन दे देना, और उसकी जमीनों पे उसको देना, ये घर छोटी बहन को देना, वो जेवर उस बहू को देना। सच्ची बात है, जो लोग सारी जिंदगी दुनिया जमा करते रहते हैं ना, बिस्तरे मर्द डेथ बेड पे वो अपने बच्चों को दुनिया ही बांट रहे होते हैं, और उनको गम यही होता है मेरी ये फैक्ट्री कौन चलाएगा मेरे बाद, मेरा कारोबार खराब ना हो जाए। तो जो जिंदगी भर की दौड़ धूप है ना, उसका खुलासा डेथ बेड पे। नबियों ने जो सारी जिंदगी खुद किया होता है ना, यहाँ बिहार से मुराद तौहीद भी है। ये लिखिए आप, वहां तो मैंने आपको सिर्फ पीछे से जोड़ना चाहता ना कि इब्राहिम खुद सारी जिंदगी तौहीद पे रहे तो औलाद को भी इसी की दावत दी, ठीक है, और यही बात होते होते उनके पोते तक पहुंची तो उन्होंने भी अपने बच्चों को तौहीद की वसीयत की। दूसरा हासे मुराद असलम, फरमाबरदार बनने की नसीहत की। अब सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यहां वसीयत की जो बात है तो अरबी जुबान में वसीयत क्या होती है? अरबी में इसका मानी होता है तालीम और तलकीन के मानों में। कोई शख्स अपनी वफात के वक्त करे या जिंदगी के किसी दूसरे मरहले पर करे, और कुरान पाक इसको हुक्म के मानों में भी लेता है। कोई याद है कुरान की आयत? बस सा का लफ्ज आया और आगे हुक्म हो। चलिए सूरत बनी इसराइल, जी पढ़िए सूरत आल अनाम, दो जगह तो मुझे भी याद आ गए, बस सही नल इंसान अभी वाली दे ही हुसना। तो वहां अल्लाह की वसीयत नाउजुबिल्ला को डेथ बेड के साथ तो नहीं है ना, तो हुक्म का मानी। तो वसीयत में क्या चीजें अरबी में? नंबर एक तालीम दी, इस जुमले को आप ऐसे पढ़े और इब्राहिम ने तालीम दी अपनी औलाद को इस बात की। फिर दूसरा मानी तलकीन की इस बात की, और तीसरी बात है हुक्म दिया इस बात का। मैं अपने आप से और आप अपने आप से पूछिए, क्या हम भी अपने बच्चों को इन तीन चीजों का हुक्म दे चुके हैं? हम भी इसकी तालीम दे चुके हैं? पहला मरहला होता है तालीम दें, असबाब बनाएं कि आपके बच्चे भी ये सब सीखें। दूसरी बात है अपने बच्चों को तलकीन करें, उस्ताद से तालीम ले आए तो फिर आप भी उसी की घर में तलकीन करें, और जब फिर भी कुछ कमी बेशी हो तो फिर आप अपने बच्चों को हुक्म दें। अपनी औलादों के साथ हम अपने मामलों को देखें, क्या हमें भी इतनी ही फिक्र अपनी औलाद की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आपको तो कितने बेटे दिए थे? हमें तो दो का ही पता है ना। आज आपके लिए हैरतनाक कुछ खबरें हैं, लिखिए जरा। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 8 बेटे दिए थे। हजरत इस्माइल बीबी हाजरा के बतन से पैदा हुए, ये मिस्र से ताल्लुक रखती थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बीबी सारा के बतन से थे, इराक से थी ये। फिर इसी तरह मिध्यान, ये तीसरे मारूफ बेटे हैं, मदियन शहर जिस तरफ निस्बत है, ये इनकी बीवी कतूरा, कतूरा या कंतूरा, कतूरा कहते हैं वैसे, उनके वतन से थे। इन्हीं से यानी कतूरा ही के वतन से जुमरान, यकसान, मिदियान, मिदियान, इसियाक और सू, ये बाकी नाम भी लिखे, बस इतना लिख लें कि इस्माइल और इसाक का नाम क्यों मारूफ है, नबी बने। बाकियों की नस्ल से चूंकि नबूवत नहीं चली ना, तो वो खत्म हो गए, ये बाकी रह गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इसराइल ही इन्हीं का लकब था जिसपे हम पीछे भी बात कर चुके। तौरात के मुताबिक इनको अल्लाह ताला ने 147 ईयर्स की एज दी और कहते हैं कि ये हजरत मूसा से तकरीबन 2000 साल पहले पैदा हुए और 1470 कबल मसीह में हजरत यूसुफ के पास ये चले गए मिस्र में, सूरत यूसुफ में हम पढ़ेंगे। और हजरत याकूब की 4 बीवियां थी और इनके 12 बेटे थे, ये सारों की डिटेल्स हम पढ़ेंगे जाके सूरत यूसुफ में। यहां छोटी सी बात करना चाहूंगी इस बात पे कि नबूवत की वजह से बेटों का नाम चला, तो बच्चे 10 हैं या 12, काम के कितने हैं, असल ये बात है। बस दफा लोग सोचते हैं कि ये है वो है और किसी के बच्चे नहीं है, हाँ उसका नाम कैसे चलेगा, नहीं नाम नहीं चलेगा, वो शुक्र करें बदनाम नहीं होगा और शुक्र करें कि उसके बुढ़ापे में रोग नहीं लगे होंगे। हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा कि औलादें इतनी नाफरमान होंगी कि बेऔलाद शख्स को जब लोग देखेंगे ना तो खुशकिस्मत समझेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ ये जो आयत आ गई कि इब्राहिम के साथ याकूब की बात आई और उन्होंने कहा या बनिया इन्नल्लाहस्तफा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन लिया दीन को। दीन से क्या मुराद है? दाना या दीन व दैनन, एक तो फिर इसमें हम बात डिटेल से कर चुके हैं सूरत फातिहा में, कहा मालिक यौमिद्दीन। देखिए आखरत के मामले में जब मालिक यौमिद्दीन आया था ना वहां, तो मुराद था बदला। दुनिया के लफ्ज में जब लफ्ज दीन आता है ना, तो बस सिंपल समान ही लिख लें अमल, दीन से मुराद अमल। और आपको तो अरबी जुबान में इस दीन के तकरीबन 7 से 8 मानी है और ये सारे हम पढ़ेंगे, उम्मत लफ्ज और दीन लफ्ज के काफी मानी आते हैं। यहां सिंपल है कि अल्लाह ने पसंद किया तुम्हारे लिए दीन, दीन से मुराद तरीका जिंदगी, रिलीजन कह लीजिए या लाइफ स्टाइल कह लीजिए, कौन सा, इस्लाम। फला तमूतुन्ना, फिर ना तुम मरना, इल्ला मगर वान तुम मुस्लिमुन, और तुम मुसलमान हो। इसकी जरूरत क्या? इसलिए कि यहूद ने, अब ये जुमला लिखिए तो फिर आपको ये आयत का सिनेरियो समझ आएगा इंशाल्लाह, यहूद ने ये बात मशहूर कर दी थी कि याकूब अलैहिस्सलाम ने हमें वसीयत की थी कि तुम यहूदी होके मरना। आप इस जुमले को मुसलमानों पे लें, आप हंसेंगे इस बात को जब आपको समझ आ जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को हुक्म दिया था कि तुम हनफी बनना। अगर मैं ये जुमला बोलूं तो आप इस पे एतराज करें जरा जी, कैसे कर सकते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात की नसीहत की इमाम अबू हनीफा तो थे, साहबा नहीं पूछेंगे कैसे बने, कौन है हनफी, हनीफा कौन है, शाफी बनना, मालिकी बनना। कल पिछले सबक के साथ आप इसको जोड़ लें, यहूद को जब कहा जाता था कि जब तुम्हारा नाम अल्लाह ने मुस्लिम रखा है तो तुम खुद को यहूदी क्यों कहते हो, तो फिर कहते थे ये हमें हमारे बाप दादा ने कहा, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा हुआ और उसमें इब्राहिम इस आग तक पहुंच जाते थे, तो वो कैसे कह सकते हैं। देखिए जैसे ये वही बात है कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से कहे कि मैं आपकी शादी पे आया था, कोई नहीं मानेगा ना। मुहज्जब माँ बाप का बच्चा तो ये नहीं कह सकता, आज के वेस्टर्न माहौल का बच्चा कह सकता है अगर कहना चाहे तो बेवकूफी है ना कि अपने से पहले वाले वक्त की बातें करना। ये हजरत याकूब पर इल्जाम लगाते थे और इस कौम की अपने हसलत पीछे भी पड़ ली, अपनी हर कमी कोताही को इन्होंने नबियों के बेटे में डाल दिया। क्यों? कि नबियों पे इल्जाम लगाओ ताकि लोग उलमा को कुछ ना कहें, कि जब नबी ऐसे थे तो फिर मौलवी तो हो ही सकता है, ये मुराद है। तो अल्लाह ताला ने उसका रद्द इधर पेश किया कि अच्छा यहां तो कुछ और लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन। इस काला जब उसने कहा ली बनी ही, अपने बेटों के लिए, ये लफ्ज असल में क्या है, ली बनीनी ही, अपने बेटों से कहा मा ताबुदूना, माँ किसकी, यहां रुकिएगा जरा, माँ क्यों आया। अरबी जबान में दो लफ्ज होते हैं माँ और मन, माँ किसके लिए आता है, بے جان، غیر عاقل، پتھر، حجر، شجر، درخت اور کچھ ایسے ہی. من کس کے لیے آتا ہے؟ عاقل. لوگوں نے اللہ کے ماں سوا کو پوجا ہے نا، تو دو طرح کی چیزوں کو پوجا ہے. کچھ نے عیسیٰ کو پوجا، جیزس گاڈ کہا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا تھے؟ من، زندہ تھے نا، ایک ہستی تھے. فرشتوں کو پوجا مکہ والوں نے، من، وہ بھی ایک عاقل ہستی ہے. کچھ لوگوں نے بعد میں آ کے کس کو پوجا؟ درختوں کو اور پتوں کو، پیپل کے پتے کو، بے جان ہے نا. گائے کو جنہوں نے پوجا، گائے کیا ہے؟ من ہے. تو من میں صرف جاندار چیزیں آتی ہیں. یہاں ماں کہہ کر پوچھا آخری حد، بے جان چیزوں میں. حالانکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ماں نہیں آنا تھا، مراد کیا تھا کہ بیٹو تمہارے بیچ میں کوئی چھوٹا سا بھی شرک تو نہیں شامل ہو جائے گا. ماں تعبدون من بعدی، میرے بعد. یہ بعد ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ لکھئے جملہ. نبی اپنی زندگی میں بتا رہا کہ میں مروں گا، تو کیا نبی مر جاتے ہیں؟ نہیں، شہید نہیں مرتا، تو نبی کا تو مقام اس سے بھی بڑا اعلیٰ ہے. سنی آپ نے یہ بحث کبھی؟ لوگ کہتے ہیں نبی نہیں مرتے، خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، یہ ان کی توہین ہے. تو وہ بات تم کریں گے سورۃ آل عمران میں، جہاں آیت آئے گی موجود ہوگی. لیکن یہاں دیکھیے کہ میں بادی سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی کو کہ میں نے بھی مرنا ہے، اور کوئی بری بات نہیں ہے. قالو، جواب سنیے. نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی. و الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ دادا کی. کون ہے وہ؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. اچھا، کون تھے وہ باپ؟ بولیے، یعقوب کے باپ کون تھے اور اسحاق کے باپ کون تھے؟ تو اسماعیل کہاں سے آگے؟ چچا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چچا باپ کا سنوان ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیے، دادا، چچا اور باپ، تین نام آئے ہیں حضرت یعقوب کے ناطے سے. اور ان سب کا الہ کون تھا؟ الہم واحدہ، ایک الہ تھا. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں. کیا بتا دیا کہ زندگی بھر جتنی مرضی بھی نیکیاں کی ہوں، لیکن اگر موت کے وقت کوئی غلط کام کر دیا تو پکڑے جاؤ گے. سورت آل عمران میں ہم پڑھیں گے کیا آیت ہے، کسی کو یاد ہے سورت آل عمران کی آیت؟ اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اصل نیکی وہ ہے جو موت تک کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت سے توحید کے عقدے بھی کھول دیے. انبیاء کرام کو اپنی اولادوں کی کتنی فکر تھی، یہ بھی کھول دی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ جن کی اپنی زندگیاں توحید کے اور اطاعت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کو اپنی اولادوں کی بھی اسی کی فکر تھی. عموماً ہمیں بچوں کے رشتوں کی اور ان کے کھانوں کی اور ان کی جابس کی اور ان کے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی فکریں تو ہوتی ہیں، باقی فکریں کم ہوتی ہیں. حالانکہ یقین کیجئے، جتنے آج فتنے ہیں، حضرت یعقوب کو تو اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے تھی اپنے بچوں کی جتنی آج کے لوگوں کو ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ کام کرنے ہی پڑیں گے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں یہ بات کہہ کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے سوچ کھول دی کہ اصل اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران کی آیت 19 میں ہم پڑھیں گے. پھر اسی طرح آل عمران ہی میں 85 میں آئے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگلی بھی آیت اسی کے ساتھ ہے، اس کو پڑھ کے آگے دوبارہ اسی پہ آئیں گے. ام کنتم، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یہ ام کیوں آ گیا بھائی؟ آ کنتم ٹھیک نہیں تھا، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا آ انذرتہم، ہے نا؟ انذر تم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہاں کیا تھا؟ آ اور لم، یہاں کیا ہے؟ ام. تو یہ شدت میں ہے، یعنی آ کی جگہ ام. کیا تھے تم شہداء حاضر؟ شہداء جو لفظ ہے نا، شاہد اور شہید دونوں کے معنوں میں آتا ہے. شاہد کون ہوتا ہے؟ جو گواہی دیتا ہے، شہادت لفظ ہے. بٹ شہید کیا ہوتا ہے؟ جو وہاں موجود بھی ہو. تو دونوں معنوں میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا آپ اس وقت وہاں موجود تھے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یا آج ہم سب کو کہا جا رہا ہے، کن تم جمع ہے نا، کہ کیا تم سارے اس وقت موجود تھے؟ اس حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی تھی یعقوب کو موت. یا پھر دوسری مراد، کیا تم نے مشاہدہ کیا تھا؟ یعنی تمہیں اس کا علم ہے، تو ہم میں سے کوئی موجود تو تھا نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو پھر یہاں گواہی کے معنوں میں، کیا تمہیں یعقوب کی موت کا وقت یاد ہے؟ کہ جب ان پہ موت آئی اس قال علی بنی ہی، تب انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یا میرے بعد تم کس کے ساتھ دیکھو گے؟ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر تھوڑی سی ریپیٹیشن نہیں آپ کو لگ رہی؟ بچوں کو پہلے یہ جو پوچھ لیا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو کیا اب ضروری ہے پھر یہ پوچھنا کہ ما تعبدون من بعدی؟ نہیں، یہاں نوٹ کیجئے گا ایک جملہ، آج تم میرے رب کی عبادت کر رہے ہو بٹ میرے بعد تمہاری نسلیں کس کی عبادت کریں گی؟ بہت لمحہ فکری ہے، ایک انسان اپنے آپ کو اگر اس پہ رکھ کے سوچے تو حقیقت میں راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ہر اولاد والے کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے، بچوں کے رشتوں کی فکر ہو، جابس کی فکر ہو، پڑھائی کی فکر ہو، ان کی اچھی ہیلتھ کی فکر ہو، ان کا کیلشیم کم تو نہیں ناخنوں میں ڈاکٹروں پہ لے جائیں اس کی فکر تو ہو، ان کے کان سرخ کیوں رہتے ہیں ذرا اس کو بھی تو دیکھ لیں، اس کے بال کیوں نہیں لگ رہے جھڑ رہے ہیں؟ آج ماں باپ کو چھوٹی چی بچی بچے کے اندر کے سارے کیلشیم پروٹین کی فکریں، خبریں بھی ہیں کہ میرے بچے میں کیا کم ہے کیا زیادہ، لیکن نہیں، جس چیز کی طرف زیادہ فکر وہ یہ ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت ہوگی، کیا کرو گے؟ اور رہ گئی بات وہ قوم، وہ نبی جو گزر گئے جنہوں نے اپنے لیے یہ ساری چیزیں رکھ دی تھی، وہ تو چلے گئے، اور یہ فکر ان کی اولادوں کو بعد میں ان باتوں کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ دن رات دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے تو بچے بھی جان چھڑائیں گے، یہ ابو باتیں ہی کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنے بچوں کو کر کے دکھاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ڈانٹا ہے، ایک طرف تو ان نبیوں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہو، چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں تو ہمیں بچا لیں گے، ہم چونکہ نبیوں کی نسل سے ہیں تو وی آر چوزن پیپل، اور دوسری طرف ان پہ اتنے جھوٹ بولتے ہو کہ نبیوں نے تمہیں نہیں کہا کہ تم یہودی بننا بعد میں، وہ تو کہہ کے گئے کہ مسلمان بننا، اسلام قبول کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو اس کے طریقے پہ چلنا، لیکن تم نہیں مانتے تو یاد رکھو تل کا امتن، وہ ایک امت تھی، کون سی تھی؟ نبیوں کی امت، تل کا کی وجہ سے امتن مونس کا آیا ہے، اور لفظ امت کے بھی عربی زبان میں کافی معنی آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ سارے لکھائیں گے۔ قد خلط، گزر گئی، خلط کیا ہے؟ پیچھے کہیں پڑا خلو الا شیاطینہم، تو اس میں تا روٹ کی نہیں ہے، خا لام واو، یہ بھی روٹ ورڈ دے دیجئے گا ان کو پارے میں تاکہ کبھی نہ بھولے، خلاؤ خالی ہونا، اور یہاں کیا معنی گزر گئی؟ اب کوئی چیز جب گزر جاتی ہے تو خالی ہو جاتی ہے نا، جب چھٹی ہوگی تو آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے، گزر گئے تو خالی رہ گیا نا روم، یہی مراد ہے، تا کی وجہ سے خلط مونس میں آیا۔ لہا ماں کسبت، ان کے لیے وہی تھا جو وہ کما گئے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کمائیاں کر رہے ہو۔ پچھلوں کے کارناموں پہ فخر کرنے کی بجائے اپنی فکر کرو، کیونکہ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، یو ول ناٹ بی آنسرڈ، یا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کیا، ام ما ان پلس ما، اب تو آپ کو کہے بغیر سمجھ آتا ہوگا انشاءاللہ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کیا، ان ما کانو یعملون، جو وہ کرتے تھے، بحث کو سمیٹا جا رہا ہے کہ تم ان پہ فخر نہ کرو، وہ جیسے فارسی زبان میں ایک محاورہ ہے پدرم سلطان بوت، میرا باپ بادشاہ تھا تو پھر تم کیا ہو، تم تو ہو سکتا ہے کہ سڑکیں صاف کر رہے ہو، دوسروں کے اوپر فخر نہ کرو۔ تو جب قومیں اپنے انبیاء پہ اور نیک لوگوں پہ اور ولیوں پہ اور پیغمبروں پہ فخر کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنی نیکیوں کو جوڑیں، ہاں میرے سسر بڑے نیک، میرے دادا ابو حافظ عالم مفتی تھے، آپ کیا ہیں، میرے ابو نے 10 مسجدیں بنوائی، آپ کو تو نہیں کبھی وہاں دیکھا ہم نے، میں مصروف ہوں، میں گریڈ 20 کا افسر ہوں، میرے پاس کہاں ٹائم ہے مسجد جانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اس کو کبھی آگے نہیں کرے گا۔ کبھی بادشاہ کا بیٹا بادشاہ نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے نا تو ڈاکٹر کا بیٹا کبھی ڈاکٹر نہیں ہوا ضروری، جب تک وہ خود نہیں پڑے گا۔ تو یہود کی خیانتوں کو بتا دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو ذرا سا سیٹ تو کرو، कि तुम अपने बाप दादा का नाम लेके जो बातें करते हो वो तुमसे कितने फर्क थे। और आगे फिर आप देखेंगे कि उनकी फिरकावारियत की बात है जिसका जिक्र अगले हिस्से से है। लेकिन जरा सा भी इतनी बातों पे रहकर हम भी तो अपनी औलादों की बात कर लें, हमारा हक बनता है। यकीन करें मैं बिल्कुल इस वक्त ठंडे जज्बात के साथ, बगैर किसी यानी जज्बात के गलबे को अपने ऊपर लाए हुए, ना ग्रज ना गुस्सा ना जज्बा, लेकिन दर्द के साथ कहूंगी कि आज कुछ कर लें आप अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। अल्लाह मुझसे कोई काम ले ले कि मेरी इस उम्मत के बच्चों की इस्लाह हो जाए। कुछ ना कुछ तो बातें हमने भी शुरू से सुनी हुई है ना, असर है, सुनाते रहे अपने बच्चों को। हमारे बच्चों में वो बात 50% चलेगी मसलन, 50 नहीं रही, और बच्चे आगे वेस्ट में यहाँ पल रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं, पहले ही उन्होंने आपका 50% लिया, शादी भी हो गई यहीं के माहौल में किसी रचे बसे से, कल वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। चलिए 25% पे आ जाते हैं, आपके पोते नवासों में जो आपका दीन है उसका 25% रह गया सिर्फ, तो उनके बच्चे 25 से फिर आगे जाएंगे तो किधर जाएंगे। इसलिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, हम सब अपने अंदर लें। देखिए आंखें बंद कर लेने से बात तो नहीं बदल जाती ना, इसलिए आपके मेरे लिए ये बात बड़ी जरूरी है। अल्लाह ताला ने यहाँ ये कहकर गम लगा दिया, लेकिन आज मुआशरे ने इतना हमारी अक्ल और हमारी होश को गुम कर दिया कि हम इससे ज्यादा सोच नहीं पाते। नाजरा पढ़ा लो, टीचर ढूंढेंगे, टीचर कुरान के लफ्ज खुद नहीं पढ़ाते, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं, हम पढ़ा सकते हैं, नहीं मौलवी साहब स्काइप, पहले तो टीचर या लफ्ज नाजरा में छोड़ देना, आज लफ्ज स्काइप, सब समझ जाते हैं कैसे पढ़ रहे हैं, कितने महीने के दे रहे हैं, हफ्ते के कितने, पर आवर कितना पे कर रहे हैं, कितने पैसे जाते होंगे, क्योंकि हर दूसरे घर में यही हो रहा है, और हर दूसरा फोन आपको भी फिर पाकिस्तान से ही आता है। हमसे अपने बच्चे पढ़ा ले, हमारे अपने स्कूल में आते हैं कि पढ़वा लें हमसे बच्चे, रियली कभी मेरे सामने, मैं किसी की गाड़ी में जा रही हूँ ना, तो कभी सिस्टर्स का फोन बिजी हो तो फोन आए तो मुझे बातों से भी समझ आ रही होती है, तो मैं उनसे पूछती हूँ ना, तो कहती पाकिस्तान से फोन आया। मैंने कहा इनको आपके नंबर कैसे मिलते हैं, फिर मैंने कहा इनसे पूछे, तो फिर उसने एक से पूछा कि आपको ये हमारे नंबर कहाँ से मिलते हैं, तो वो फिलिस्तीन ढूंढते हैं मुसलमानों की, कहीं से मिल जाती होंगी, चार चार दफा एक एक से फोन आया हुआ, इतनी फिक्र है लफ्जों की लेकिन मानी कहाँ है। इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो आप टीचर ढूंढें और इंग्लिश में लिखी हुई मेडिकल की किताब बच्चा खुद पढ़ के डॉक्टर बन जाए, हाउ इज इट पॉसिबल। तो जरूरत है इस वक्त हम दर्द को महसूस करें, रियली इसके लिए आपको आराम छोड़ना पड़ेगा, नींद छोड़नी पड़ेगी, आपको चार लोगों जितना काम करना पड़ेगा, बिलीव मी, क्योंकि चार नहीं कर रहे ना मुआशरे के, तो आपको चार का करेंगी ना तो फिर बैलेंस होगा। मुआशरा तो इस वक्त कुछ और कमा रहा है, उनको बच्चों के घर की फिक्र है। मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है कि कुंवारी लड़कियां यहां पहले घर लेती हैं, जॉब के बाद पहली चीज घर ले रही हो बेटी, क्यों भाई किसके लिए, किधर है, नहीं फिर इसकी बुनियाद पे अब घर बनाऊंगी, फिर रिश्ता होगा, फिर शादी करूंगी, फिर पाकिस्तान से लड़के को बुलाऊंगी। मैंने कहा कितने का लिया है, 3 मिलियन का। तो मैंने कहा कहां से लिए पैसे, कहती लोन। मैंने कहा कितना लोन लिया है, कहती सारा। मैंने कहा सारा दे देते हैं, कहती दे देते हैं, पता नहीं 6-10 हजार कुछ दिया, तो अब मैंने ये पूरा कब होना है, 20 से 23 साल में, हर महीने कितना दोगी इतना। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुरान का क्या बना, कितने पारे पढ़ रही थी आपने, अब कहाँ है, हाँ बस अब नहीं आया जाता, जॉब शुरू कर दी है। इतने दूर से हम अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए घर पहले लेते हैं कि लड़कों को पाकिस्तान से बुलाना आसान होगा। लड़के तो हमारी सुनते नहीं है, कम ही सुनते हैं, वो कहते हैं आप जाने आपके काम, मैंने जो करना था कर चुका हूँ। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करती, मैं यहाँ सिर्फ इस बात की बात पे आपका एहसास दिला रही हूँ कि हमें अपनी बच्चियों के इस रिश्तों से ज्यादा अब उनके मुस्तकबिल और उनके जॉबों और इनका फिक्र लग गया, बनेगा क्या। यकीन करें ये जो हादसा हुआ हमारे खानदान में, मुझे उसके बाद अपनी फिक्र लगी हुई है, पहले ही बड़ी थी, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह लगा दे, अब तो मैं लगता है कि हर सांस मेरे पास एक अमानत है, कहीं अकेले बैठी हूँ मैं कहती हूँ मैं मर गई, किसने आके पूछना है। इतना खौफ आता है कि किस हाल में मरूंगी, फला तमोतुन्ना इल्ला वांतुम मुस्लिमुन, हम अपने ऊपर रहे ना, फला तमोतुन्ना इल्ला वांतुम --, आप खुद फिल इन दी ब्लैंक्स करें। हमने सारे प्लान आखिरत के लिए रखे हुए हैं, या अगले दिनों में या अगले साल के लिए, बस ये पढ़ लूं तो फिर आगे, ये कर लूं तो ये आगे, भाग रहे हैं सुबह से शाम तक। आप तो यहां से उठ के चले जाएंगे ना अभी थोड़ी देर में, कुछ साथी हैं जो बाद में आते हैं, और कुछ यहां से भी रहते हैं। मैं यहां से तकरीबन जब जाती हूँ शाम को तो मगरिब, अब तो अंधेरा ही हो जाता है इधर। यकीन करें मैं भाग दौड़ करती आती हुई माँ को देखती हूँ, जिस तरीके से वो अपने बच्चों को छोड़ती है। आप में से कुछ शाम में दोबारा भी आते हैं माशाल्लाह। मैं हैरान होती हूँ कि एक माँ किस हाल हुलिये में अपने बच्चे को छोड़ने आ रही है, और पढ़ाना क्या हमने उसके बच्चे को, अली बाता। और ये माँ सारा दिन पता नहीं कितने सुबह 7 की निकली होगी, धक्के खाती बच्चे को स्कूल लेके आई है, फिर जाएगी फिर घंटे पर लेने भी आएगी। वला तमुतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। और इसलिए जो बच्चों का स्टाफ होता है, मैं उन्हें कहती हूँ ये जो तर्जमे, ये जो आप कर रहे हैं ये तो करें, पर बच्चों को रू दें, पता तो चले कि इन बच्चों की सोच क्या है। इस वक्त याद रखें हमारे बच्चों को, अब नमाज, रोजा, हज, कहना ये छोटी बातें रह गई हैं। वला तमुतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। फिक्र छाई हो दुनिया से भी जाते हुए गम ये पड़ा हुआ कि औलाद क्या कर रही है, और ये गम ही इंशाल्लाह आगे जाएगा। अल्लाह ताला मेरी आपकी इसलाह फरमाए। आप लोग कुछ शेयर करना चाहें तो करें जी। आप
दुनिया बनी थी तो सब मुस्लिम थे।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है इनका। जब दुनिया बनी थी ना सब मुस्लिम थे, आज भी जो बच्चा पैदा होता है ना वो मुस्लिम होता है। यानी किसी भी बुत परस्त माँ के गोद में भी बच्चे ना उसको उठाएं, बाज लोग कहते हैं नापाक होते हैं ये वो, आप आमतौर पे सोचते हैं पाकिस्तान में गैर मुस्लिम हाथ भी लगा ले बाल्टी को तो कलमे पढ़ पढ़ के धोते हैं। अब यहाँ तो हम रहते ही वेस्टर्न कंट्रीज में, हमें इतना नहीं इन लोगों से लगता, तो पाकिस्तान में तो सफाई करने लिए जमादार नहीं बर्तन को हाथ लगा ले तो लोग कलमे पढ़ाते हैं उसको। तो ये बच्चे मुसलमान है, हर बच्चा मुसलमान है।
जैसे ही मैंने सवाल किया कि हर बच्चा मुसलमान है तो उसकी
फिर
क्या
माँ बाप जो
कंडीशन
बोलते हैं
है।
वही बना देते हैं। यानी अगर कोई बच्चा अपने बचपन में मर जाए तो वो जन्नत में जाएगा, फिर माँ बाप का असर होता है। आपने हदीस है कि यहूदी, नसरानी, मजसूसी, फिर जो बच्चे के ऊपर माहौल छा जाता है वही आ जाता है। ठीक है।